विष्णु ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। आप सबको ये अनुभव होता है कि हमारी बाबा पालना कर रहे हैं। सारे दिन में कितना समय अनुभव होता है, ये अकाउंट किया है कभी? नहीं, कल से करना, ठीक है? क्योंकि भक्ति मार्ग में भगत बन करके हम उनकी भक्त स्वरूप में उस विधि से पूजा करते हैं, या उस जैसे एक हम एकदम जैसे ये अपने आप को समझते हैं, जैसे हम चरणों की, भगवान के चरणों की धूल है, इतना भी साधारण होकर के भक्ति करते हैं। लेकिन शिव बाबा कहता है, तुमको तो मैं कंधे पर बिठाता हूँ, तुम तो मेरे बच्चे हो, भूल गए हो, भटक गए हो, तुम ढूंढे लेकिन सही रास्ता नहीं पकड़ा, इसलिए ढूंढते ही रहे, और मैं आकर के सबको ढूंढ लिया, सबको अपना बना लिया। तो हम सब उसके कौन है? बच्चे हैं, भगत नहीं है, वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। तो ऐसा बच्चे का अनुभव सारे दिन में करना, ये भी बहुत अच्छी खुशी की बात है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं सर्व संबंधों से मैं साथ में हूँ, ये अनुभव करो सारे दिन में। एक ही संबंध नहीं पकड़ो कि वो मेरा बाप है, मैं उसका बच्चा हूँ, लेकिन वो मेरा टीचर भी है, वो मेरा सतगुरु भी है, और नजदीक का संबंध क्या कि वो हमारा फ्रेंड भी है और बच्चा भी है। क्योंकि उसको अगर हम बच्चा बनाते हैं तो जो भी हमारे अंदर जो भी है वो सब उसको देते हैं, तो वारिस है। लेकिन हम सब बच्चों से बाबा क्या मांगता है कि जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं वो मुझे दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा कोई धन न चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना महल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब अपने पास रखो। तो ऐसा बाबा चाहता है। तो जब साकार में भी हम बाबा को देखते थे, उस समय तो खैर हम छोटे थे, बहुत साल हो गए, बाबा का भी 41 ईयर्स चल रहा है, तो ये स्टोरी तो उससे पहले की है। तो कैसे बाबा को जब हम पहली बारी देखा, उस समय तो हम बहुत ही छोटी थी, 7-8 साल की थी। अब छोटी होते भी मैं उनको एक साधारण रूप से नहीं देखा, लेकिन बहुत जैसे कि हाईएस्ट अथॉरिटी है, बहुत ऊंचे से ऊंचा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा अनुभव पहली दृष्टि से किया। तो जो पहली दृष्टि थी उसमें मैं चली गई ट्रांस में। 2-3 घंटा मैं बाबा के लैब में ही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर 2-3 घंटे के बाद मैं जब इस पृथ्वी लोक में आई तब मुझे मेरे से पूछा गया, बाबा ने ही पूछा, लेकिन हम बहुत शर्माते थे बाबा से उस समय, बाबा के आगे कैसे बोलेंगे। फिर बाबा ने मम्मा को ड्यूटी लगाई तो बच्ची से पूछो क्या देखा, कहाँ गई थी 2-3 घंटे, कहाँ गायब थी। फिर तो अपना सुनाया कि हम इस दुनिया से बहुत दूर दूर, आवाजों से, दुनिया की निगाहों से बहुत दूर दूर चली गई थी और बस एक नया ही संसार देख के आई हूँ। उस नए संसार को देख करके जैसे कि मैंने ये संकल्प कर लिया कि मुझे अभी रहना है तो बाबा के साथ ही रहना है और किसी के साथ नहीं रहना है। तो बाबा जहाँ से हम निकले वहाँ बाबा आए थे, मम्मा भी आई थी, मम्मा 2 बारी आई, बाबा 1 बारी गए थे। तो वो 1 बारी जाने से ही हमने सोचा कि बाबा इधर 4-5 दिन रहे हमारे पास, लेकिन फिर दोबारा देखने की इच्छा हो रही है। तो फिर हम पहुंचे बाबा के पास दोबारा। तो फिर बाबा ने मुझे वहां अपने पास 15 दिन रखा। फिर उसके बाद कहा कि बच्ची तुम मधुबन में चलोगी। तो मैं तो जानती ही नहीं थी मधुबन क्या है, कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। तो फिर इतने में थोड़े समय के बाद हमारे घर से पेरेंट्स आगे लेने, तो बड़ी ही जैसे कि मुश्किल से, क्योंकि वही बात आती ना, मैंने बाबा के आगे हम इतना बात नहीं करते थे, शर्म करते थे। तो फिर बाबा ने देखा इस बच्ची की इच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी बाबा ने मेरा प्रोग्राम बनाया कि बच्ची तुम जाओ घर में और बाबा तुम्हें प्रॉमिस करता है तुम्हें मधुबन लेके चलेगा। लेकिन मैं बाबा के ये शब्द सुन के बस रोने लगी। तो बाबा के जेब में इतना बड़ा रुमाल था तो मुझे गोद में ले लिया और कहा कि बच्ची मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलूंगा और मैं तुमको वहां से वापस बुलाऊंगा, अभी तुम जाओ। तो मैं आ गई। तो फिर मैंने वहां पर अपने घर के अंदर 2 दिन तपस्या की। मैंने कहा बाबा को भूल भी सकता है, तो आप समझते छोटे बच्चे तपस्या करेंगे, माँ बाप को फिर चिंता तो रहती है ना कि खाएगा नहीं पिएगा नहीं, तो नेचुरल है। फिर बाबा का लेटर आ गया तो वो बच्ची ने जो प्रॉमिस किया था, बाबा फलानी तारीख मधुबन जा रहे, उस समय माउंट आबू नहीं बोलते थे, मधुबन बोलते थे, मधुबन जा रहे हैं और बाबा के पास उसके पेरेंट्स छोड़ के जाए। बस फिर तो मेरे धरती में पैर ही नहीं थे, बस खुशियों की कोई वही नहीं थी, अंदाजा ही नहीं था। तो फिर हमको पहुंचाया उन्होंने बाबा के आगे। फिर बाबा ने कहा बच्ची आ गई, मीठी बच्ची आ गई, तुम मधुबन चलोगी, अच्छा भला मम्मा को बताया है। तो फिर मैं उसी समय मम्मा के पास गई तो देखती रही मम्मा को। फिर मम्मा कहती है कि तुम मधुबन चलोगी, इतनी छोटी सी, मेरी टेस्टिंग हो रही है, इतनी छोटी सी, तुम वहां तो लोग ही नहीं है, जंगल है, तुम तो डर जाओगी, वहां शेर है, सांप है, लंबे लंबे बिच्छू है, तुम कैसे रहेगी वहां। तो मैं देखती रही। उस समय मैं 7वां लगा था मुझे पंजाब से। तो बस फिर मैं आई दिल्ली में, मतलब फिर उसी समय बाबा उस दिनों में तो ऐसा होता था कोई रिजर्वेशन का कोई सवाल ही नहीं था, उसी समय ट्रेन में बैठो उसी समय टिकट लो। तो भाव विश्व किशोर हैं, वो ट्रेन के पास जो फोटो है ना, उन्होंने बाबा ने उनको कहा इनकी टिकट ले लो। समझो आज मैं पहुंची हूँ 10 बजे, दूसरे दिन दिल्ली से 10 बजे हम रात को निकले, तो स्टेशन पर मेरी आधी टिकट जब लेने लगे तो भाव विश्व किशोर कहते हैं कि बाबा ये तो बिना टिकट चल सकती है, छोटी है बहुत, इसकी टिकट की जरूरत ही नहीं है। 4 रुपया लगा था यहाँ आने में आधी टिकट में, और पूरी टिकट में 8 रुपया लगता था। तो बाबा ने कहा सेफ्टी रहेगी बच्चे, इसलिए 4 रुपए तो लगेगा और आधी टिकट उसकी हो जाएगी। तो फिर तो हम आ गए यहाँ। तो उस समय बाबा के साथ 10-15 लोग थे ट्रेन के अंदर, और यहाँ तो कुछ भी नहीं थी, एक भी गाड़ी नहीं थी, बैलगाड़ी भी बाद में आई, कुछ नहीं था यहाँ। ये म्यूजियम आप देखते हो ना जाकर के, उसके पीछे जो ग्राउंड है वहां पर ही समझो बसेस खड़ी होती थी, और वहीं से ही लोग बसेस लेकर के कहीं भी जाना होता, बहुत थोड़ी 2-3 बसियां होती थी, ज्यादा तो होती नहीं थी, तो वहां से लोग चढ़ते थे। तो हम जब स्टेशन पे उतरे तो ये हमारी बूढ़ी दादी जो अभी शरीर छोड़ गई, 4-5 महीने हुए ना, तो वो जल्दी जल्दी आई स्टेशन पे, कहती है बाबा बाहर गवर्नमेंट की बस भी खड़ी है और एम्बेसडर गाड़ी भी ले आई हूँ आपके लिए, और वो भी खड़ी है। तो उस समय भाड़े पर एक एम्बेसडर गाड़ी रखी हुई थी, ये बहुत पुराना मॉडल है एम्बेसडर गाड़ी, जो अभी भी चलती है यहाँ हमारे पास पांडव भवन में। तो फिर बाबा को कहती आपके साथ कौन जाएगा, तो कहा ये बच्ची तो हमारे साथ जाएगी, बाकी सबको बस में ले जाओ। तो आगे ईशु दादी जो दादी प्रकाशमणि के साथ साथ रहती है ना, और भाव विश्व किशोर, और पीछे मम्मा बाबा और बीच में मैं, तो लेके आए मुझे यहाँ। तो रस्ते में मैं ये बेहोशी हो गई, क्योंकि यहाँ चढ़ाई उतराई में ना मुझे तकलीफ ज्यादा होती है। तो फिर देखा बाबा ने ये बेहोश है, तो फिर बाबा कंधे में लेके अपने फिर अपने पलंग पे सुलाया। मुझे नहीं पता है, जब मैं होश में आई तब मुझे पता पड़ा कि मैं बाबा के बिस्तर पे सोई हुई हूँ। बस फिर उसके बाद समझो कि बाबा का बहुत ध्यान जाता था मेरे ऊपर, जिधर से भी जाती थी तो बाबा बड़े ध्यान से देखते थे। तो जैसे बाबा को एक एग्जाम्पल लगता था कि यानी ये बच्ची जो है इसने बचपन से ही समझो बाबा को धक से अपना बना लिया, ना आगा देखा ना पीछा, ना सोचा कि कौन मुझे पालेगा, क्या करेगा, कैसे रहूंगी, कुछ भी सोचा नहीं। फिर बाबा ने समझो कि रोज मुझे बुलाते थे झोपड़ी में। उस समय बाबा की झोपड़ी जो होती थी, ये जो खजूर का जो पेड़ है ना गेट के बाहर आप निकलोगे, बहुत लंबा गेट के साथ ही है लंबा, जहाँ ये कैबिन बना हुआ है ना लकड़ी का, ये पेड़ इतना बड़ा, इसके पत्ते निकाल करके हर साल नए लगाते थे बरसात के बाद, क्योंकि बरसातों में काला हो जाता था ये झोपड़ी इस पत्तों से। फिर बाबा को वहाँ बिठाते नहीं थे, और उन दिनों में बरसात तो 3 महीने चलती थी, 3-3.5 महीने कंटिन्यू। तो फिर बस झोपड़ी में मुझे बुलाते थे, झूला होता था तो झूले में बुलाते थे। फिर धीरे धीरे हमको फिर थोड़ा थोड़ा शौक लगा, ये भी करूं वो भी करूं। तो बाबा कहते थे तेरे हाथ छोटे हैं, तू कैसे सब करेगी। तो मैं सीखती गई थोड़ा थोड़ा। फिर एक बारी बाबा मुझे कहते हैं बच्ची तुम खाना बनाना सीखोगी, मुझे पता है तुमको करछी चलानी भी नहीं आती है, बाबा तुमको सिखाएगा, तो बाबा को बना के खिलाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नमक बहुत कम डालना, नमक डल जाएगा तो वो सब्जी खा नहीं सकेंगे ज्यादा डलेगा तो, लेकिन ऊपर से डल सकता है कम होगा तो। तो ये जैसे अकल बाबा ने हमको शुरू से ही करछी घुमाते ही बताया। फिर समझो मैं जो खाना बनाती थी ना, उसको 6-7 बारी तो धोती थी बाबा की सब्जी को, और रात को 10-11 बजे तक गेहूं साफ करती थी, फिर उसको धोती थी, फिर उसके बाद घर में आटा पिसवा के फिर बाबा को रोटी बना के खिलाती थी। मतलब कहती थी किसी ऐसे लोग का हाथ नहीं लगना चाहिए बाबा के खाने में, बाबा के उसमें। तो बाबा कई बारी आकर के छिपके से आके देखता था, अरे मीठी बच्ची अभी तक तुम अनाज गेहूं ही साफ कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो मैं उसी में ही लगी रहती थी जैसे मस्त। मुझे मतलब बाबा को सुबह नाश्ता देना है तो रात को सारा तैयार करके रखती थी। तो बहुत जैसे कि एक कहते हैं ना, जैसे ईश्वर में लवलीन होकर के सेवा करना, किधर भी बुद्धि को भटकाना नहीं। और दूसरा बाबा कहते थे कि खाना बनाते हो, खाना बनाते समय बिल्कुल मुंह खोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात करेंगे पहली बात तो समझो मुंह से थूक भी सब्जी में चली जाएगी, सबसे गंदी बात तो ये। और कहते थे कि इधर उधर की बातें करके आप सब्जी बनाओगे तो वो सब्जी में वो कौन सी भावना बैठेगी, फिर आप जब टेबल पर बैठ करके उसको खाओगे तो वही बोलचाल की वृत्ति से ही खाओगे, तो आपका मन तो शुद्ध होगा नहीं ना। तो इसलिए कहते थे भोजन पर टोटल रोटी सब्जी जो भी कुछ है सब में कहते थे शांति से बाबा से योग लगा के और वो सेवा करो, जिससे वो हमारा भाग्य बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ बनता है। तो ये जब बाबा, फिर बाबा कहते थे कि किचन में चारों तरफ लिख दो शिव बाबा याद है। तो बाबा ने फिर लगवाया किचन के अंदर शिव बाबा याद है, अपने से पूछो, क्योंकि इधर समझो पानी का नलका है तो सामने शिव बाबा याद है, क्वेश्चन अपने से कि बरोबर मुझे याद है नहीं है, वो अपनी चेकिंग खुद कर सकता है इंसान। तो इस तरीके से समझो कि बाबा का रहता था कि कर्म करते हुए मुझे याद करो, इतना सहज याद है जिसके लिए कोई मुश्किल नहीं लगता है, नेचुरल। जैसे समझो यहाँ से आप किचन तक गए, पानी पीने गए, कितना लंबा रास्ता है पानी पीने का, तो कितना सुंदर आप बाबा को याद कर सकते हो वहां तक, समय बहुत है, बैठ के भी याद करना है, लेकिन ज्यादातर तो मनुष्य का चलना ही ज्यादा होता है ना भाई, 3 बारी खाना खाएगा, 10 बारी पानी पिएगा, उसमें चाय भी आ गई, पानी भी आ गया, सब टोटल पूरे दिन का मिलाओ। तो उस विधि से हम उस चीज को यूज करते हैं तो समझो कि हमारी स्थिति अंदर की और हमारी आत्मा की जो शुद्धि है वो भी समझो कि बहुत बहुत जैसे पता पड़ता है कि मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। बाकी टेस्टिंग तो आएगी ना, एक एक सेकंड में टेस्टिंग आएगी, क्योंकि इस समय तो कलयुग का अंत है, माया का बहुत बड़ा अपोजिशन है सारे विश्व के अंदर, उसके अंदर से गुजरना है, उसके लिए तो जरूर अपने आप को स्टेप बाय स्टेप संभालना पड़ेगा ना, तब गुजर सकेंगे, तब अपनी स्थिति को भी अंदर की देख सकेंगे कि हम कितने बने हैं, कितना रास्ता हमने क्रॉस किया है और आगे हमें अभी कितना करना है। क्योंकि बाबा तो कह रहे हैं ना कि बच्ची अभी उड़ो, अभी समय बहुत नजदीक चलता जा रहा है और बहुत ही नजदीक है, किसी के लिए कब घड़ी कौन सी आ सकती है, वो किसी के पास वो दिन नहीं है, वो समय नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि मैं कौन से दिन उड़ूंगा, कौन से दिन मेरी घड़ी आएगी। दूसरों को तो हम देख लेते हैं लेकिन अपनी स्थिति कैसी बनी है वो तो फिर हम जब अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तब पता पड़ेगा। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि सर्व संबंधों का सुख लो सारा दिन में, एक ही संबंध में नहीं रहो लेकिन सर्व संबंधों का। जैसे आज हमारे थाली के अंदर खाली खिचड़ी आ जाएगी, सोचेंगे नहीं दाल भी ले, रोटी भी ले, सब्जी भी ले, पानी भी ले, छाछ भी ले, कितनी चीजें हो जाती। और जब ब्रह्मा भोजन होता है तो उसमें 4-5 चीजें, तो पूरी थाली के अंदर जैसे ब्रह्मा भोजन, तो वैरायटी रूप से उसका टेस्ट लेते हैं ना, उस विधि से खाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है मेरे संबंधों का भी तुम सारे दिन में अनुभव लो, ताकि ये जो व्यर्थ जो मनुष्य देखता है, सुनता है, बोलता है, अपने अंदर रोल बनाता है वेस्ट का, जिससे अपना कोई मतलब नहीं है, वो भी मैं रोल बना रही हूँ, उससे हमारी स्थिति तो नहीं बनेगी ना, खोखली रह जाएगी ना स्थिति अंदर से। इसलिए बाबा कहता है कि उधर से समय निकाल के और अपना इस तरफ अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते चलो, क्योंकि बैंक श्रेष्ठ कर्मों का बैंक भी तो जमा करना है ना। अभी करेंगे तब तो आगे जाके खाएंगे, जमा ही नहीं होगा तो कैसे। जमा तो कई प्रकार से होता है। अगर समझो आज मैं सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मेरी बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो वो मेरा जमा का खाता तो नहीं बन रहा है। तो हर प्रकार से हमें, क्योंकि ये बाबा ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए, हाथों से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, पैरों से भी श्रेष्ठ रास्ते पे चलने के लिए। तो ये हमें देखना है कि सारे दिन में मैं कितना अपने आप को श्रेष्ठ रास्ते पर ले जा रही हूँ, कितना मैं श्रेष्ठ देख रही हूँ, कितना मैं सुन रही हूँ, कितना मैं बोल रही हूँ, कितना मुझे अपने ऊपर, दूसरे को नहीं। अगर मैं दूसरे में बिजी रहूंगी तो अपना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बनेगा, 0/0 हो जाएगा। तो इसलिए ये ज्ञान बड़ा डीप है। तो हमने अपनी लाइफ के अंदर आज शुरू से लेके आज तक कभी बाजार की कोई चीज नहीं खाई, सबसे पहली बात। दूसरा, कोई एक फिल्म भी नहीं देखी आज दिन तक भी। और तीसरा, पढ़े नहीं स्कूल में, तो किताबें कोई ऐसी खराब आगे आई नहीं जो पढ़े, स्टोरी एक भी स्टोरी पता नहीं है कि क्या है स्टोरी, बस बाबा की स्टोरी है।